प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 28 फरवरी 2017 है, फरवरी का अंतिम दिन। और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो के लिए जो मैंने विषय चुना है, सच पूछे तो विषय एच सच है नहीं, कोई किस टॉपिक पर मैं आपसे बातें करने नहीं जा रहा हूं। आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे तो फिर मैं किस पर बातें करने जा रहा हूं। जी हां, मैं बातें करने जा रहा हूं और आपसे मैं लगभग 20 मिनट बातें करूंगा, और किसी टॉपिक पर नहीं बल्कि मैं आज आपसे एक पेपर पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने खासकर कुछ अलग तरह के भी निर्णय लिए हैं, तो आज पेपर पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि टॉपिक तो जब हम न्यूज एनालिसिस करते हैं तो उस पर भी थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, लेकिन हम एज सच पेपर पर बात नहीं कर पाते क्योंकि जो डेली ऑडियो गाइडेंस का, डेली ऑडियो लेक्चर का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली करेंट बेस्ड है, तो जिसमें आप जानते हैं कि न्यूज एनालिसिस, रेडियो न्यूज और कभी कभी टीवी न्यूज भी शामिल हो जाता है, और फिर अखबारों की क्लिपिंग्स, अखबारों के आर्टिकल्स और एडिटोरियल के आधार को आधार बना करके हम लोग बातें करते हैं, तो वो टॉपिक पर सीमित हो जाता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक अच्छा अवसर है जब बिल्कुल खाली केवल विशुद्ध 20 मिनट एक ही विषय को दिए जा सकते हैं, तो एक विषय पर थोड़ी गहनता से बात हो जाएगी, थोड़ी सी विस्तार से बात हो जाएगी, और वह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी बजाय इसके कि हम उसी पर टुकड़े टुकड़े में बातें करें। तो दोस्तों, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ठीक है कि इसका संबंध आपके प्री से नहीं है, प्री एग्जाम से नहीं है, इसका संबंध तो मेन एग्जाम से है, लेकिन मेन एग्जामिनेशन के भी मेन में है ये। और दोस्तों, आप शायद समझ चुके होंगे, वह पेपर है निबंध का पेपर, एसे। मित्रों, सामान्य तौर पर होता क्या है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि जब हम लोग सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे थे 1980 के, जब नया पैटर्न 79 में आया था, उस समय एसे का इंडिपेंडेंट पेपर नहीं था। एसे था लेकिन वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में हुआ करता था और वो क्वालिफाइंग था। बाद में जाकर 90 के आसपास ऐसे को रीइंट्रोड्यूस किया गया, फिर से शामिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी, क्योंकि बीच में जो 10 सालों तक इसे एक तरीके से कह दीजिए खारिज कर दिया गया था, तो उस समय लोगों ने महसूस किया होगा कि नहीं, लड़कों की इंटेलिजेंस को जांचने के लिए या इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि स्टूडेंट सिविल सर्वेंट बनने के कितना काबिल है, ऐसे का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस घटना को मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूं ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। मतलब मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे के पेपर के महत्व को समझकर उससे उतनी तरजीह देते हो। नहीं तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि क्या ऐसे का पेपर है, क्या है, आराम से लिख लेंगे। मुझे याद आ रहा है कि मैं तो कक्षा पांचवीं में था तब से ऐसे लिखते आ रहा हूं और मुझे हर साल ऐसे में अच्छे नंबर मिलते थे, मतलब 70-75% तो ऐसे में नंबर मिल ही जाते थे, और आईएएस में अगर आप 50% भी नंबर ले आते हैं तो फिर आप फर्स्ट 100 में आ जाते हैं। तो यार, मैं तो 70-75% मार्क्स लाता था, तो 50% लाने में क्या दिक्कत है। और कुछ ऐसा भी नहीं कि विषय कुछ बहुत कठिन होते हों। अब ठीक है, उस समय गाय पर निबंध लिखते थे, साहित्य और विज्ञान पर निबंध लिखते थे, अब थोड़ा सा विषय बदल जाएगा, लेकिन है तो ऐसे ही ना। तो मैं भी तो उतना मेच्योर हो चुका हूं, ग्रेजुएट हो चुका हूं, मेरी भाषा अच्छी हो चुकी है उस समय से, तो नहीं नहीं इसके लिए ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे कठिन जो विषय हैं जनरल स्टडीज के, उस पर तैयारी किया जाए। दोस्तों, ये मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, आप अपना मूल्यांकन करके देखिए कि सच में ईमानदारी के साथ सोचिएगा कि ऐसे को लेकर के आपकी धारणा क्या है। और स्पष्ट है कि अगर आपकी धारणा इसको लेकर के हल्की फुल्की है तो आप उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे, जबकि मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ऐसे आपको गंभीर होने की एक चुनौती देता है। चुनौती मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड कि जब कोई कठिन विषय होता है तो वो तो चुनौती देता ही देता है, उसके लिए तो आप सतर्क होते ही होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। लेकिन जब कोई विषय आपको सरल लगता है लेकिन अंदर से वो कठिन होता है, तब आप उसे चुनौती के रूप में नहीं लेते, और जब चुनौती के रूप में नहीं लेते तो आपका व्यवहार भी उसके साथ बड़ा सरल सहज होगा, और पता लगा कि यार, आप तो जिसे सरल सहज समझ रहे थे वो तो अंदर से बड़ा कठोर था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, बड़ा कठिन था। गच्चा खा गए। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ प्राकृतिक आपदा जैसी है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसकी पूर्व घोषणा न की जा सकती? भूकंप, चलिए आंधी तूफान के बारे में तो हम पता कर लेते हैं, भूकंप के बारे में हम पता नहीं कर पाते कि भूकंप आने आ सकता है, कभी नहीं सुना होगा आपने। आंधी तूफान के बारे में तो कह देते हैं कि 3 दिन के बाद आ सकता है, यहां अरब सागर के ऊपर फलाना फलाना बन रहा है, फिर हवा चलेगी, और फिर भूकंप के बारे में तो कुछ नहीं। इसलिए भूकंप में ज्यादा विनाश होता है क्योंकि वो अचानक आता है। अचानक इसलिए आता है कि हम सतर्क नहीं थे, मतलब अचानक इसलिए नहीं आता कि हम सतर्क नहीं थे, मतलब यूं कह लीजिए कि विनाश ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम सतर्क नहीं थे। तो आपसे जो निबंध है, जो मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं मित्रों आज इस डेली ऑडियो के माध्यम से, वो ये कि आप निबंध के प्रति भी गंभीर होइए, इस पेपर को भी उतना ही सीरियसली लीजिए जितना आप दूसरे पेपर को लेते हैं। सीरियसली लेने का मतलब मैं मार्क्स के आधार पर नहीं कह रहा हूं, वेटेज तो समान है, ये भी 250 नंबर का पेपर है, आपको भी इसमें उतना ही स्कोर करना है जितने आपको दूसरों में स्कोर करना है, क्योंकि टोटल मिलकर के ही आपकी मेरिट को निश्चित करेंगे। तो उस रूप में तो आप लेंगे, लेकिन तैयारी के रूप में मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं कि आपको इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी जो चुनौती निबंध के पेपर की है वो ये है कि ये देखा गया है कि जो जो टॉपर रहे हैं, जो फर्स्ट 10 में रहे हैं, उनके मार्कशीट मैंने देखे हैं, मैंने ये महसूस किया है कि जो फर्स्ट 10 में आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो एसे में जो स्कोरिंग है वो लगभग इन बिटवीन 55-65% स्कोर है उनका, ज्यादातर 50% के आसपास है, ज्यादातर 140-150 के रेंज में उनके मार्क्स होते हैं। तो मुझे लगता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो टॉपर हैं इसलिए वो 60% स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जो स्टूडेंट बहुत नीचे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1000 लड़के हैं उसमें से मैंने 750 नंबर की रैंकिंग पर जो स्टूडेंट है उसकी भी मार्कशीट देखी है। क्योंकि जब आपको निष्कर्ष निकालने होते हैं तो ये सारे काम करने होंगे, आप कुछ थोड़े से आंकड़ों के आधार पर सार्वभौम निष्कर्ष नहीं दे सकते। तो मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट रैंकिंग तो उसकी 750 है, लेकिन ऐसे में वो भी लगभग 125-30 या कुछ तो मैंने देखे हैं कि 140-145 तक नंबर ला पाए हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग इसलिए बहुत नीचे चली गई है क्योंकि दूसरे में वो बहुत कम रह गए हैं, और जो टॉपर हैं या फर्स्ट 100 के स्टूडेंट हैं उन्होंने बाकी में भी स्कोर किया है। अब आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? दोस्तों मैं कह रहा हूं कि 750 रैंकिंग लाने वाला भी स्टूडेंट नंबर ले आता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक सामान्य स्टूडेंट भी ले आता है, याद रखिए, अदरवाइज आप यही निष्कर्ष निकालेंगे कि यार मतलब इतने नंबर तो मिल ही जाते हैं, यही निष्कर्ष निकलता ना, 750-800 की रैंकिंग वाले को मिल गया है तो मतलब इतने नंबर तो मिल जाते हैं तो हमको भी मिल जाएंगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उसका कारण था कि इसमें 40-50 नंबर मिले, 40-50 नंबर उसको इसमें मिल रहे हैं, और जो 750 की रैंकिंग पे है वो 140 नंबर लेकर के आ रहा है, तो एक ही पेपर का की जो लीड है वो 100 मार्क्स की है। अब आप इस 100 मार्क्स को कैसे कवर करेंगे, किस पेपर में कवर कर लेंगे? याद रखिए कि उसको 750 इसलिए रैंकिंग मिल पाई है क्योंकि उसने एसे में अपने को बनाए रखा है। अगर एसे में बनाए नहीं रख पाता तो लिस्ट से गायब हो चुका होता। ये दूसरी चुनौती है फ्रेंड्स, यानी कि ये पेपर ऐसा है जो आपको डुबो सकता है और ये पेपर ऐसा है जो आपको तार भी सकता है। यानी कि आपने अगर तैयारी कर ली तो आपको ये अच्छे मार्क्स दिला सकता है। कुल मिलाकर यह कि यह एक स्कोरिंग पेपर है लेकिन बिना तैयारी के नहीं। अगर आप तैयारी करेंगे तो यह पेपर भी स्कोर मार्क्स आपके कराएगा, और याद रखिए कि इसमें स्कोर करना कंपलसरी भी है, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत नीचे गए तो फिर उबरने का कोई रास्ता नहीं है, उबरने का रास्ता नहीं है। दोस्तों मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूं कि जिनकी रैंकिंग 375 के आसपास रही है, जिनको कस्टम एक्साइज सर्विस मिला और जिनके ऑप्शनल पेपर में मार्क्स बहुत कम रहे, मतलब 250 में समझिए कि 75-80 नंबर 250 में, यहां वो बुरी तरह से फेल हो गए लेकिन ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स रहे। मैंने ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ऐसे के दम पर, ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स रहे और इतनी अच्छी रैंकिंग होगी, बाकी पेपर में भी उन्होंने संभाला अपने आप को, जबकि जनरली ऑप्शनल में लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है, और वो ऑप्शनल में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि उनको बहुत कम मिले, प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी उनकी, उनकी अपनी परिस्थितियां थी, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो हमारे एकेडमी के स्टूडेंट भी रहे हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरी पूरी तैयारी सिर्फ एकेडमी के बताए हुए माध्यम से हुई है। तो दोस्तों, लेकिन अगर वो ऐसे में संभाल नहीं पाते तो क्या होता, आप देखेंगे अगर फिर कैलकुलेट करेंगे कि अगर वो 50-60 नंबर के आसपास आते तो लिस्ट से ही बाहर हो जाते वो। तो दोस्तों, आप इसके महत्व को समझिए, ये सेकंड इसका करेक्टर है कि आपने अगर इस पर थोड़ी सी भी गंभीरता से तैयारी की, थोड़ा सा भी आपने इसे वक्त दिया, इसकी जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए उस तरह से की, तो आपको ये बहुत मार्क्स दे सकता है और इसमें लाना जरूरी ही है। ये मान करके चलिए कि इसका जो पासिंग मार्क्स है आपके दिमाग में होना चाहिए, पासिंग मार्क्स 50% है कि मुझे 250 नंबर में से 125 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ये तभी मैं पास हो पाऊंगा, पासिंग मार्क्स। अधिक आप जितने ला सकते हैं वो आपकी क्षमता के ऊपर है, राइट। अब मैं थोड़े से ऐसे पर आता हूं। दोस्तों, दो भागों में विभाजित होता है, आप अनसॉल्व्ड पेपर आप देख लीजिएगा। अब आप देखिए कि ये दो भागों में जो इसका विभाजन है वो किस तरीके का विभाजन है। हालांकि 2016 के पेपर को आप देखेंगे तो यह विभाजन सीधे सीधे उस तरीके से नहीं है कि मैं ये कह दूं कि भाई पार्ट ए में एक कॉमन तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो किसी से भी आप पूछ सकते हैं। पार्ट बी में पहले इसी तरह का विभाजन होता था, पार्ट बी में जनरली थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। लेकिन 2016 के पेपर में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। 2016 के पेपर में कुछ ऐसा बना दिया है कि पार्ट वन में दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही कॉमन है, जैसे कह दिया स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है, मतलब स्त्री को भी जब तक आप बराबर स्थान नहीं देंगे आप विकास हासिल नहीं कर सकते, तो ये कॉमन है। दूसरा उन्होंने दे दिया कि आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का आधिक नस्लें बर्बाद करता है, ये भी कॉमन है। लेकिन इसी पार्ट के तहत जो दूसरे दो क्वेश्चन दे दिया है, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, तो अब आप देखिए कि जल विवाद में उस समय कर्नाटक और तमिलनाडु का बहुत जबरदस्त विवाद चल रहा था आपको मालूम है, तो उस पर बेस्ड आ गया ये, हालांकि उसमें दूसरे विवाद भी शामिल हो जाएंगे, तो ये जनरल नॉलेज जैसा दिखाई दे रहा है। एक इसी पार्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है कि नव प्रवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है, तो ये इनोवेशन के ऊपर है, इनोवेशन की भी बहुत बातें हो रही हैं आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जनरल स्टडीज का भी है और थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी है कह सकते हैं, लेकिन जल विवाद तो जनरल स्टडीज का है। जब हम पार्ट बी में जाते हैं तो जो दोस्तों पार्ट बी में भी आपको कुछ इसी तरह का मिला जुला रूप मिलेगा, लेकिन वहां एकदम कॉमन सेंस के क्वेश्चंस नहीं है, वो आपसे थोड़े से अलग किस्म की तैयारी की मांग करते हैं। मैं जानबूझ करके कह रहा हूं अलग किस्म की तैयारी की मांग करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ऐसे को लेकर के कॉमन सेंस की धारणा बनी हुई है, यानी कि कॉमन सेंस के आधार पर लिख लेंगे। यहां तक मित्रों मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आप गांठ बांध लें कि जो कॉमन सेंस या जो बहुत ही जनरल टॉपिक होते हैं उन जनरल टॉपिक को भी जब आप ऐसे के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें स्टाइल इंपॉर्टेंट होती है और उसमें यह भी बात इंपॉर्टेंट होती है कि उस जनरल टॉपिक के बारे में आपकी लेटेस्ट जानकारियां कितनी हैं, यानी कि आप कितने वेल रेड हैं, आपने कितना अच्छा पढ़ रखा है, कहां कहां से पढ़ रखा है, कितने अलर्ट हैं, ये सारी चीजें जब आपके ऐसे में चेक हो जाती हैं भले ही आपको इस बात का एहसास न हो। इसी को तो चेक करने के लिए वो 10 साल के बाद फिर से ऐसे के पेपर को लेकर के आया जिसे उन्होंने निर्वासन दे दिया था, उसको फिर आमंत्रण कर देना पड़ा। अब आप देखिए कि सेक्शन बी में क्या है। पहला तो उन्होंने दे दिया सहकारी संघवाद मिथक अथवा यथार्थ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मिथ और रियलिटी। अब सहकारी संघवाद मिथ या यथार्थ है, ये केवल एक कहने भर की बात है या सच में इसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको लिखने के लिए आपको इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों की जानकारी होनी चाहिए, तो जनरल स्टडीज का हिस्सा हो गया। इसके बाद फिर जो दूसरा दिया है पार्ट बी में वो है साइबर स्पेस और इंटरनेट। फिर उस पर पूछा जैसे पहले आता था ना कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनाया गया है कि साइबर स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में, अभी के लिए नहीं, दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान अथवा अभिशाप। आप अब देखिए कि साइबर स्पेस और इंटरनेट एक साइंस का टॉपिक हो गया और आपको थोड़ी सी उस तरह की जानकारी होनी चाहिए, हेल्थ पर क्या इंपैक्ट होगा, हमारे ब्रेन पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हो रहा है इसका, किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं या किस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है, किस तरह से इनोवेशन नए नए आ रहे हैं, नए नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, कि ये किस तरह से हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है, लाइफ स्टाइल को इसने बदल दिया है, अगर लाइफ स्टाइल को बदल दिया तो उसके क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, तो आप इनको, इन सब चीजों को आप लिख देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो आप कागज पर उतार पाएंगे। तो ये अब थोड़ा सा एकदम कॉमन सेंस से हटकर विषय हो गया, जो आपसे स्पेशल थोड़ी से नॉलेज की मांग कर रहा है। फिर जो तीसरा दिया हुआ है दोस्तों वो इकोनॉमिक से आ गया कि भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि, आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम। अब आप देखिए कि यहां ऐसे में भी वैश्वीकरण आ गया, आर्थिक सुधार का मतलब वैश्वीकरण ही है। अभी हम बिल्कुल रोजगार, हमारी वृद्धि तो हो रही है, हम 6-7-8% आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं हो रहे हैं, तो ये किसकी वजह से है, क्या आर्थिक सुधार यानी कि वैश्वीकरण। और इसके बाद चौथा दिया हुआ फ्रेंड्स डिजिटल अर्थव्यवस्था, एक समताकारी या आर्थिक असमता का स्रोत, डिजिटल इकोनॉमी ये लेवलर और ए रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब आपको देखना है कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था आई है ये समाज में समानता स्थापित करेगी या समाज में असमानता को बढ़ाएगी। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जो समावेशी विकास की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया और ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, इनसे क्या स्थिति हो सकती है, तो आपसे एक विजन की वो मांग कर रहे हैं कि आपको क्या दिखाई देता है। तो अब आप देख इधर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़े, इनके लिए थोड़ी सी तैयारी की जरूरत होगी, हालांकि ये तैयारी आपकी अलग से नहीं होगी, जनरल स्टडीज की जो आप तैयारी करेंगे उसमें इन टॉपिक्स पर आपको तैयारी करनी ही करनी है, उसमें ये टॉपिक शामिल है। हाँ, जहां तक वो दो आवश्यकता लोभ की जर्नी और अजन्नी और स्त्री पुरुष समान सरोकार के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता, तो इसमें आप एक सामान्य सोच के तहत इसको हल कर सकते हैं। तो मित्रों अब मैं तीसरे बिंदु पर आता हूं। पहले बिंदु में तो मैंने दो चुनौतियां और इसके इंपॉर्टेंस की बात की है, दूसरे में मैंने उसके रूप बताए हैं कि ऐसे का पेपर आपका किस तरीके का होता है, और अब तीसरे में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही थोड़ा सा अब वक्त बचा है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही मुझे बात करनी होगी। वह यह है मित्रों की जो ऐसे है बेसिकली एक आर्ट है, कला है, लेकिन कला किसका है, आप यूं कह लीजिए कि नॉलेज को एक्सप्रेस करने की कला है, या आप यूं भी कह लीजिए कि साइंस को एक्सप्रेस करने की कला है। जैसे साइबर स्पेस पर हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट पर हम बात कर रहे हैं, तो ये साइंस है, लेकिन क्या आपको, जबकि आप इस साइंस के टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हैं, तो साइंस को साइंस की तरह लिखेंगे या साइंस को आर्ट की तरह लिखेंगे, यहां आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि आप चाहे साइबर स्पेस और इंटरनेट के एक्सपर्ट क्यों ना हो, इस टॉपिक पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों ना किया हो, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तब आप इसे कलात्मक रूप में लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आपका टारगेट ग्रुप कौन है, ऐसे को पढ़ने वाला समूह कौन है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, साइंस के स्टूडेंट भी हैं लेकिन वो कॉमन स्टूडेंट हैं, ऐसे आप लिख रहे हैं कॉमन मैन के लिए, आप ये मानकर चलिए। जब हमारे नेता भाषण देते हैं तो भारत के संविधान के बारे में कहते हैं, भारत के आर्थिक विकास के बारे में करते हैं, भारत की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं जब भाषण देते हैं तो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एड्रेस किसको कर रहे हैं, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, तो उनकी भाषा बदल जाएगी, उनके कंटेंट बदल जाएंगे, कहने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन यदि यही मिनिस्टर, मान लीजिए कि ये वित्त मंत्री हैं और अपने सेक्रेटरीज और इकोनॉमिक्स के एक सम्मेलन में बोल रहे हैं, तो उनकी चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी, और पता लगा कि जिस टॉपिक पर बोल रहे हैं वो टॉपिक वही था जो अभी सुबह वो जनसभा को संबोधित करके आए हैं, तो दोस्तों ये मैं बहुत ही एप्रोप्रिएट और एक सामान्य किस्म का लेकिन बहुत ही जोरदार उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरीके से एक ही टॉपिक इज सेम, लेकिन जब आप उसमें कंटेंट ला रहे हैं तो वह बदले हुए हैं, क्योंकि जो आम जनता है उसको बहुत ज्यादा आंकड़ेबाजी समझ में नहीं आएगी, उसको बहुत ज्यादा सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, उसको तो सामान्य सामान्य सी चीजें समझ में आएंगी। अभी आपके ऊपर है कि आप उसे वो सामान्य सी चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस भाषा में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस स्टाइल में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके स्टाइल भी वही होनी चाहिए कि वो समझ जाएं। ये ऐसे राइटिंग की आप कह लीजिए कि कला है या उसकी आवश्यकता है, उसकी मांग है। अगर आपकी राइटिंग को पढ़ने के बाद, आपके ऐसे को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को ये लगा कि आप तो किताबों से लिख रहे हैं, आपकी भाषा किताबी है, आपके कंटेंट किताबी हैं, तो सीधी सी बात है कि वो समझ जाएगा कि विषय की समझ तो आपके पास है, शायद मेरे से भी ज्यादा है, लेकिन ऐसे की समझ नहीं है। दोस्तों मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि विषय की समझ तो आपके पास है लेकिन ऐसे की समझ नहीं है, और उसने आपसे जो पूछा है वो विषय के तहत नहीं पूछा है, ऐसे के तहत पूछा है, और बस वहीं आपकी मार्किंग कम हो जाएगी और वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मेरा अर्ज है कि ऐसे पर आप अभ्यास करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप एक कॉमन लेवल पर पहुंचे कि एसे इज एड्रेस टू ए कॉमन पीपल, आप समझ जाएंगे। अगर आपको और इसके लिए ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो आप आईएएस कैसे बनेंगे का पार्ट वन है, उसके तहत एसे का एक चैप्टर है जिसमें मैंने बहुत विस्तार के साथ इस पर लिखा है, क्या कंपोनेंट होने चाहिए, स्टाइल क्या होगी, भाषा क्या होगी, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर वो किताब आप ले लेंगे या आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इस पर आपकी दृष्टि और साफ हो सकेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।